أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اصلاح نفس کے چار اصول، فور پرنسپلز آف سیلف امپروومنٹ. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور آج کا ہمارا لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے، جس کو ہم قرآن کا مطلوب انسان اس تھیم پہ لے کے چل رہے ہیں. ہر روز یہ جملے میں شوق سے بولتی ہوں کہ شاید کسی دن کا ٹاپک کسی کے دل کے دروازے کھول دیں. جو لوگ مستقل سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز میں ہم ہر دن میں ایک مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور اس میں ہم جو مین تھیم لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ہم سبھی عموماً جس خیال اور جس سوچ کے ساتھ بڑے ہوئے وہ کیا تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوں گے، لوگ کس چیز سے راضی ہوں گے، لوگ کس چیز سے مطمئن ہوں گے. یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اسلام ہمیں انسان دوست بناتا ہے، انسان دشمن نہیں بناتا. لیکن جب ہماری ساری کوششوں کا ہدف یہ ہو جائے کہ لوگ ہم سے راضی رہیں، لوگوں کو ہم خوش کر لیں، لوگ لوگ لوگ، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی رضا پیچھے چلی جاتی ہے اور لوگوں کی آگے آ جاتی ہے. تو آج ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک، اور وہ کیا ہے کہ اصلاح نفس، نفس کی اصلاح. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ساری زندگی شیطان کو ہی دشمن کہتے اور سمجھتے رہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ اس کا جو دوست، جو جاسوس ہمارے اپنے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کو ہماری پل پل کی خبر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر شیطان بھی ہمارے اصل کو جان کر ہم پہ حملہ کرتا ہے، وہ ہمارا نفس ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، جس کو آج کی زبان میں ہم پروفیشنلی کہتے ہیں ہر خطبہ، ہر درس، ہر وعظ سے پہلے ایک نبی سے دعا ضرور سنی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من شروری انفسینا. کبھی آپ کہتے من شرری نفسی، کبھی آپ سب کے لیے کہتے من شروری انفسینا. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شروری انفسینا. آپ میں سے جو درس و تدریس سے منسلک ہیں ان کو یہ سب کو خطبہ آتا ہوگا. تو نفس کیا ہے؟ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. 13 پارے کی پہلی آیت، سورۃ یوسف 53 آیت ہوگی یقیناً. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایسی بڑی حقیقت کھول دی کہ جس نے قصہ یوسف کی حقیقت ہی کھول دی، کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو برائی ہی کی دعوت دیتا ہے. الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کر دے. کیا پتہ چلا کہ گھر کے بھیدی جو لنکا ڈھاتے ہیں نا، اس میں سے ایک بہت بڑا بھیدی ہمارا نفس ہے. اور قرآن میں اس بارے میں بہت دفعہ بہت جگہ بات ہے. مثلا سورۃ شمس کی آیت 9، قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. آپ اور میں تو کہتے ہیں فلاح وہ پا گیا جو ماسٹر کر گیا، ہم تو کہتے ہیں فلاح وہ پا گیا جو ڈاکٹر بن گیا، جو انجینئر بن گیا، فلاح پا گئی وہ لڑکی جس کی شہر میں کسی بہت ہی بڑے گھر میں شادی ہو گئی، فلاح پا گیا وہ جس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا، فلاح پا گیا جو ہائر اسٹڈیز کے لیے دنیا کے کسی بہت بڑے ملک میں موجود کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ پا گیا، और ये बात कहते हुए मुझे आज से शायद 10 साल तो हो ही गए होंगे, एक माँ याद आ गई कि जो रात जाते गाड़ी रोक रोक कर लड्डू बांट रही थी, और पूछने पे नहीं उसने वैसे ही बता दिया कि असल में मैंने नियत की थी कि मैं पूरे शहर में लड्डू बांटूंगी, मिठाई। कब? क्योंकि उसके बेटे को कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। अल्लाह करे कि उस बच्चे का दीन ईमान महफूज हो, लेकिन उसने बड़े चौहों से लड्डू बांटे थे। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुरान क्या कहता है? कद अफलाहा मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। और हकीकत बताऊं, ये नफ्स इतना बड़ा दुश्मन है, सांप मर जाता है, बिच्छू मर जाते हैं, कॉकरोच मर जाते हैं, लाल बेग मारते आसान है, नफ्स को मारना बहुत मुश्किल है। ये तो कुरान पढ़ के भी नहीं मरता, और मैं डरते हुए कहूँगी कि ये तो कुरान पढ़ा के भी नहीं मरता। बंदा नमाजी हो जाता है, रोज़ेदार हो जाता है, हज कर लेता है, हर साल उम्रा कर लेता है, जो भी नेकी उसको मुयस्सर हो वो कर लेता है, लेकिन जिस चीज़ से वो नाकाम हो जाता है ना, वो क्या है कि नफ्स। वो कहते हैं ना कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। ये जो मन है ना, यही नफ्स है। तो बात ये है कि आज हम अपने अंदर के दुश्मन से निपटने की कोशिश करेंगे। बाहर के दुश्मनों से निपटना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि वो नज़र आते हैं। दूसरी बात है, हम उनको दुश्मन समझते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम उनको हकीकत में ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन घर के अंदर किसी के कोई आ जाए, लट सी मिसाल देती हूँ, आपके घर में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपका घर तबाह करना चाहता हो, घर की कोई मेड है आपके शोहर पर डोरे डाल दे, आप कोई ऐसी लड़की अपनी खिदमत के लिए रखें कि जो आपके बेटे को फांसे, कैसा लगेगा? रखेंगे उसको साथ? कभी भी नहीं रखेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी सी हदीस का खुलासा कि जिसमें आपने फरमाया कि तुम में से किसी का उस मेहमान के बारे में क्या ख्याल है जिसकी तुम जितनी इज्जत करो वो तुम्हें उतना ही रुसवा करे। तो लोगों ने कहा कि बड़ा ही बुरा मेहमान है। देखिए ना, मेहमान की खिदमत या इज्जत कोई करे तो उसको खुश होना चाहिए ना। लेकिन कहा, वो जैसे होते हैं ना, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, थोड़े दिले और छोटे लोग होते हैं ना, लो कहले पर लो, तो वो कभी भी आपकी नेमतों को या आपकी तरफ से की हुई अच्छी चीज़ को अच्छा यूज़ नहीं करते, फिर भी के डस जाएंगे। वो कहते हैं सांप के बच्चे को दूध पिलाओ और वो फिर भी डस ही लेते हैं ना। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी, वो तो बड़ा ही बदतर है कौन ये? तो आपने फरमाया, वो तुम्हारा नफ्स है। मैं पूरे शऊर से आपको ये बता सकती हूँ कि अगर हम अपने नफ्स की हकीकत जान जाए तो हम अकेले में आईना देखने से डर जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग शक्लें बदल देते हैं, डिफॉर्म्ड फेसेस खोलकर कभी ड्रावे करते हैं, कभी आजकल तो वैसे ही बड़े अजीबोगरीब किस्म के गैजेट भी बन चुके हैं ना, कि जिसमें लोग कभी कुत्ते की शक्ल कभी बिल्ली की बनाकर अपनी स्नैप्स भेजते हैं। इससे भी खौफनाक शक्ल नफ्स की होती है। अभी ये वक्त नहीं है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह तज़किया नफ्स की पूरी सीरीज है, बल्कि दौरे कुरान 2010 DQ 2010 जो था ना, वो मैंने इसी मौजू पर करवाया था नफ्स के बारे में, उस तज़किया नफ्स कह लीजिए। तो उसमें ये सारी बातें इंट्रो लेक्चर्स में बताई थी कि भेड़िया, चीता, शेर और भी दो तीन जानवरों की खसूसियात जमा करें ना तो इंसान के नफ्स के अंदर होती है, और अच्छा भी होता है। लेकिन असल बात जो इस वक्त आप और मैं समझना चाहते हैं वो क्या है कि ये ज़िंदगी क्या है, हमारी इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। और हम कभी तो बैठकर ये सवाल करते ही होंगे ना कि मैं जा किधर रही हूँ, मेरी हकीकी मंजिल क्या है। लेकिन आप सब यहाँ आए, पता था ना किधर आना है? हमारी तरह कोई पहली दफ़ा आ रहा होगा तो जहन में तो बहुत कुछ सवाल होते हैं, लेकिन जो जिधर ले जा रहा हूँ चलते जाते हैं। आजकल तो नेविगेटर ही बहुत है जो आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि गाड़ी में बैठे हो, किधर बैठे हो पता नहीं, कौन से स्टेशन पे उतरना पता नहीं, क्यों जा रहे हो पता नहीं, कोई बावला हो सकता है, असल तो नहीं है। तो ज़रा आज जनवरी 9, 2023, और याद दिहानी के लिए बता दूं कि हम मुल्तान शहर में एक वेडिंग हॉल या मार्की कहते हैं इसको, इसमें बैठे हुए हैं। इस वक्त को लिख लीजिए कि जिसको मकसद हयात नहीं पता, वो जिंदगी वो हयात को गुजारेगा कैसे। कुरान इस पे बहुत वाजे है, अफा हसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या बस तुमने ये गुमान किया है कि तुम्हें बेमकसद पैदा किया गया, बेकार पैदा किया गया। वानना को मिले ना ला तुरजाउन, और क्या तुम हमारी तरफ पलट कर नहीं आओगे। आप खोलिए सूरत मोमिनून आखिरी रुकू, उसकी आयत है। दो सवाल है, अफा हसिब तुम में, क्या तुमने ये सोचा है, क्या तुमने ये गुमान किया, क्या तुमने ये गौर किया। अफा हसिब तुम अन्नमा खलक ना को मबसा, उर्दू में हम बोलते हैं अबस का, बेकार काम है, अबस है, फजूल है। जिंदगी का हर काम किसी मकसद के साथ है। आप वॉशरूम का डोर खोलते हैं ना दिन में 2-3 बार, तो उसमें जाने का भी एक मकसद होता है। फ्रिज खोलें तो मकसद के साथ खोलते हैं ना। घर से जितनी दफा गाड़ी निकलती है किसी मकसद से निकलती है ना, ये लग पाता है कि वो मकसद अच्छा है बुरा है, जरूरत भी थी कि नहीं, लेकिन मकसद तो होता ही है ना। तो मेरे आपके इस दुनिया में आने का, इस जगह भेजे जाने का कोई मकसद ना हो। और याद रखिए, आपको ये बड़ी सादा सी बात लग रही होगी कि ये क्या कह रही हैं, कोई नमाज की बातें करें, कोई रोज़ों की करें, कोई अब रमज़ान आ रहा है तो अब रमज़ान की बातें करें, ये क्या मकसद है हयात। और मैं कह सकती हूँ, आम दुनियादारों की नहीं मैं बात कर रही, वो तो बेचारे खोए हुए हैं ना, वो तो अल्लाह हमारे उन सारे भाई बहनों को वाकई को ज़िंदगी का मकसद समझा दे, लेकिन मैं दीन की बात करने वाले अक्सर लोगों की भी बात करती हूँ। पढ़ना बराए पढ़ना, नमाज बराए नमाज, रोज़ा बराए रोज़ा, हज बराए हज, उम्रों पे उम्र, हज पे हज। पहले 5 नमाजें, फिर 6 नमाजें, फिर 7, पहले फ़राइज़, फिर सुन्नतें, फिर नवाफिल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे ये भी, लेकिन मकसद नहीं पता। और याद रखिए कि ये सादा सी बातें अगर इब्तिदा से ही ना समझी जाएं तो पूरी ज़िंदगी गलत सिमत दौड़ते गुजर जाएगी। फिर एक दिन अचानक मुलाकात होगी तो मलकुल मौत से। उस वक्त फिर इंसान हैरत से तकता रहेगा कि अभी तो सोचा भी ना था, अभी तो मैंने तैयारी भी ना की थी, अभी तो मैंने सोचा भी नहीं था। सूरत क़यामत खोल लीजिए, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि कभी तुमने देखा, वल्लौ इज़ा बलगतिल खुल्कुम, क्या कभी तुमने या काश तुमने देखा होता कि जब तुम्हारी जान यहाँ खुल्कुम, ये जगह काटते हैं ना इधर से रखो, कि जब तुम्हारी रूह हंसली तक पहुंच जाएगी, तुम्हारी जान निकलने वाली होगी। वकील अमन राख, कहा जाएगा कोई है झाड़फूंक करने वाला, कोई भी नहीं है। फिर आगे जाके कहा तफ्फत इस साक बिस साक, पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी, यानी ये जो तुम्हारी ये थाइज है ना, ये ऐसे जुड़ जाएंगी, क्योंकि जान पहले टांगों से निकलती है। और उस वक्त फिर जो मर्जी कर लो कोई नहीं आएगा। और फिर उसके बाद फराक, ये जुदाई का वक्त है। ज़रा सा अपनी मौत को हम सोचें, राइट अवे, आज का दिन, मैं कितने साल की हूँ, मुझे इस दुनिया में आए हुए कितने साल हो गए। चलिए शुरू के 10 साल निकाल दीजिए, वो तो थे ना, ज़रा नहीं बताता, समझ नहीं थी अपनी असल उम्र इस वक्त आपकी और मेरी, उसमें से -10 करके देखिए कि हमें दुनिया में आए कितने साल हो गए। रोज़ सुबह होती है और शाम होती है और ज़िंदगी तमाम होती है, ईट ड्रिंक एंड रिपीट, और वो ईट ड्रिंक बी मैरी। रोज़ सुबह उठ के एक ही नहीं सुबह होती, आप देखिए कि सुबह होती है ना, सब घरों में कमोबेश एक ही जैसे हालात होते हैं, सारा दिन हम कमोबेश एक ही जैसी मूवमेंट्स में होते हैं। आप सब तो माशाल्लाह यहाँ मुसलमान हैं ना, नॉन मुस्लिम मुल्कों में रह के मैं अक्सर इस चीज़ को बहुत सोचती हूँ, कोई क्रिश्चियन, कोई ज्यू, कोई एथियस्ट, कोई बुद्धा, कोई भी मज़हब हो, ये सब किधर भाग रहे हैं। रोज़ एक ही काम, पेट भर के आखिरी वक्त तक ढक्कन लगा के पेट पे सोते हैं, और सुबह उठते हैं तो कहते भूख लगी हुई है। सारा घर साफ करके सोएंगे, सुबह उठ के लोग सिर्फ तैयार होके निकलते हैं तो घर फिर तलपट, फिर किचन, फिर वही चूल्हा, फिर वही चौंका। आखिर ये गुड्डी गुड्डे का खेल कब खत्म होगा? और कुरान में बहुत दफ़ा इसकी तरफ इशारे हैं। सूरत स्वाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि माँ खलकता बातिला, सुबह फजर से पहले तहज्जुद के वक्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़ते थे, सूरत आल इमरान का आखिरी रुकू, इन नफी खल के समावाती वलर्दी वख्तिला फिल लैली वन नहार वन नहार इला आयात लिउलिल अलबाब, ये क्या सिखा रहा है? माँ खलकता हाजा बातिला, ए अल्लाह तूने ये बातिल नहीं पैदा किया। तो इतनी बात को मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। आप सब माशाल्लाह अपने घरों में हैं, बच्चे भी हैं, आप भी हैं। आपने आज शाम को किसी शादी में जाना हो, क्योंकि हमारे लिए ये बात समझनी बड़ी आसान है, इसी में ये बड़ी अच्छी मार्की है, इधर शादियां भी होती होंगी ना, प्रोग्राम, दावतें, मंगनियां और भी बहुत कुछ होता होगा। जब आपने इधर किसी प्रोग्राम में, पार्टी में आना होता है, तो आने से पहले जहन में क्या सवाल होते हैं? कितने बजे जाना है, किसके साथ जाना है, क्या पहनना है, कौन से कपड़े, फिर कपड़ों के साथ जूता कौन सा, फिर मैचिंग, है ना, तैयारी होती है। और माशाल्लाह अपने ही घर की कोई शादी हो तो फिर तैयार कहाँ से होना है, ये कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मिसालें आम हैं। जूँ ही आप पार्टी के मोड में आते हैं, आपकी टोन बदल जाती है, मज़ा आएगा, खाएंगे, पिएंगे, मिलेंगे, घुलेंगे, कोई बुरी बात नहीं, नाफरमानी का कोई काम ना करें तो कोई बुरी बात नहीं है, मिलेंगे घुलेंगे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। फिर आप पूछते हैं, आप क्या पहन रही हैं भाभी, आप क्या पहनेंगी, अच्छा आप बाजी क्या पहन रही हैं, अच्छा ये, और घर पूरा, और तो शादी में, अपने घर की शादी तो पहले दौर की बात थी, अब तो हर शादी में एक बच्चे से लेकर बड़ा तक सेल्फ कॉन्शियस होता है, बूढ़ी अम्मा जी भी देख रही होती हैं आईने में, और अब्बा जी भी कहते हैं कुछ मैनू भी दे दो, जवानों की तो उम्र ही है ना। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, हो गया। चलिए, आपकी बेटी का इम्तिहान है कल सुबह, और इम्तिहान भी वो जो बड़ा ही मुश्किल लगता है, और वो क्या है, मैथ, हिसाब किताब। आप कहती हैं बेटा कल कितने बजे जाना है, इतने बजे, कहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो फलां एग्जामिनेशन हॉल है, क्या पहनोगी बेटा, क्या मतलब है अम्मी, क्या पहनना, जो भी मिल गया, मैं पेपर देने जा रही हूँ, ज्वेलरी कौन सी निकाल दूँ, मैचिंग जूता परस। आपकी बेटी जो आज रात को शादी पे जाने के लिए आपके साथ बड़ी बजिद थी कि ये भी ले दें, वो भी ले दें, ये नहीं वो नहीं, सुबह जब इम्तिहान देने जा रही है तो उसका तो मूड ही चेंज हुआ है। कहती मामा मुझे तंग ना करें, मेरा पेपर है, मैंने अभी दोहराई करनी है, जो भी होगा पहन लूंगी, कुछ भी नहीं, बस मैंने ऐसे ही जाना है, यूनिफॉर्म है या जो भी है। हुआ क्या, लव्स पार्टी के साथ मूड चेंज हो गया, लफ्ज़ इम्तिहान के साथ मोड चेंज हो गया। बस यही है, जिसने इस दुनिया में आने के मकसद को समझ लिया, और वो क्या है, हर रात आप सूरत मुल्क पढ़ते होंगे अल्लाह की रहमत से, तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो आखिरी जुमला ना, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अहसन अमल करता है, अक्सर नहीं कहा, हम तो अक्सर अमलाल की बात है ना, बहुत अमल करने हैं, वहां ये कि अहसन थोड़ा भी करो तो अहसन करो, सुथरा करो, नियत साफ रखो, तरीका ठीक हो, सुन्नत का मुताबिक हो, अच्छा अच्छा करो, क्वालिटी सही रखो, क्वांटिटी की परवाह ना करो। अब जब ये मकसद देखते हैं तो इससे पता क्या चलता है कि ये दुनिया एक कमरा इम्तिहान है, दिस वर्ल्ड इज एन एग्जामिनेशन हॉल। थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं ताकि आपको मुझे अंदाजा हो कि ये बात समझ आएगी ना, फिर आपके बच्चे नमाज पढ़ेंगे। ये बात समझ आ गई थी सहाबा को तो जिंदगी के किबले बदल गए थे, फिर किसी के एक इंच जमीन पर कोई नजर नहीं रखता, फिर अल्लाह की नाफरमानी का एक जरा सा ज़र्रा सा अमल भी ज़िंदगी में नहीं आता। चलिए रिलेट करें, माशाल्लाह सब कुछ ना कुछ पढ़कर हम बड़े हुए हैं ना। कमरा इम्तिहान के साथ जहन में क्या आता है? नंबर एक, सिलेबस क्या पढ़ा है जिसमें से इम्तिहान आना है, ठीक है। दूसरी बात, 3 घंटे, अभी नहीं मुझे पता इम्तिहान में कितने घंटे देते हैं, हम जब पढ़ते थे पाकिस्तान सेटअप में तो 3 घंटे का पेपर होता था, 8 सवालों में से 5 करने होते थे अमूमन, एक पहला लाजमी होता था, बाकियों में से 4 कर लो, ऐसा होता है अभी भी? अभी भी नहीं बदला। चलिए, कुछ लाजमी सवाल, कुछ ऑप्शनल। अगली बात क्या होती थी, शॉर्टेज ऑफ टाइम। 3 घंटे भी हमें थोड़े लगते थे, सच्ची बताऊं, फिर शुरू का सवाल बड़ा ही लंबा हम कर ले, और आखिरी वक्त में गम पड़ जाता था कि अब 4 सवाल कैसे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट पेपर मिलने के बाद बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करे तो 5 सवाल को 3 घंटे में करने के लिए 45 मिनट ऑलमोस्ट एवरेज एक सवाल पे बनती है। चलिए शुरू में फ्रेश होता है इंसान तो लंबा कर लिया, बाकी पहला सवाल 1 घंटे में तो बाकी 4 जो आधे आधे घंटे में कर लिए, ये भी ठीक है, पेपर को गौर से पढ़ा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, पेपर का टाइम ख़त्म, वो जो एग्जामिनर ऑन ड्यूटी होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं 5 मिनट लेफ्ट, 3 मिनट लेफ्ट, और फिर उसके बाद वो पेपर लेना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर और लिखने की ख्वाहिश के साथ पेपर वापस होता था। कुछ लोगों की तो वो लाइन लग जाती थी जब बिल आखिर वो खींच लेते थे, कुछ लिख देते थे वक्त की कमी की वजह से पूरा नहीं लिख सकी, चलो ये भी एक मेरा कोड बन जाए, अब दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, खरा खटली करते थे, ये ठीक इतना गलत, लगता है 100 में से 90, ओहो एक गलत निकल, नहीं 85 मार्क्स आ जाएंगे। चलिए बोर्ड के एग्जाम थे मैट्रिक के, अब लंबा इंतज़ार, अब रिजल्ट 3 माह बाद आएगा, फिर खबर आती है कि जी पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आ गया, वो कलेजा हलक में नहीं आ जाता था। और उस दौर में लिस्टें लगती थी कुछ कुछ जगहों पे, कोई ना ईमेल थे ना मैसेजेस थे ना फ़ोन थे ना कुछ, जी रिजल्ट लेना। फिर उसके बाद अगले दिन अखबारों में तस्वीरें छपती थी टॉपर्स की, सरगोधा बोर्ड में फर्स्ट आया कोई, इसमें ऐसे सभी ऐसे गुजरे ना। अब इसको ज़रा सा देखिएगा, जो कामयाब होते हैं फिर उस दौर के भी अखबारों और मैगजीन्स वाले उनसे इंटरव्यूज लेते थे, आपकी रूटीन क्या थी, आप कितना पढ़ती थी, क्या करते थे, इतने अच्छे नंबर कैसे आए, और ये वो। उसी में कुछ परसेंट लोग फेल भी हो जाते थे, कुछ की सप्लीमेंट्री आती थी सप्ली। चले अब इन सारे मराहिल को हम करते हैं अपनी ज़िंदगी से, ये दुनिया कमरा इम्तिहान है, वहाँ 3 घंटे थे, यहाँ भी 3 बड़े दौर हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा, वहाँ भी एक सिलेबस है जिसमें पेपर आएगा, यहाँ भी एक सिलेबस है, इसको असूले सलासा कहते हैं, 3 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, दूसरे लफ्जों में इसी को कब्र के 3 सवाल भी कहते हैं, अकायद, कब्र के सवाल अकीदे से मुतल्लिक, मन रब्बू का, मन रसूलू का, मा दीनू का, ठीक है, अल्लाह कौन, मोहम्मद सल्लम कौन, और तुम्हारा दीन क्या था। उसके बाद आगे चलिए कि जब हम सारी ज़िंदगी इम्तिहान देते रहते हैं ना, हर रोज़ जब सुबह होती है तो हमारी किताबें ज़िंदगी का एक सफ़ा खोल दिया जाता है, असल में ना हम सभी किताब लिख रहे हैं, खाली ब्लैंक कॉपी आपको उस दिन दी जिस दिन आप बालिग हो गए, उसे पहले अल्लाह ने माफ़ कर दिया, क्योंकि बच्चे तो काटे मटे डालते हैं ना, क्या उनकी कापियों को लेना। अल्लाह के इशारे देखिए कि बलूगत तक आपके लिए कलम रोका हुआ है, आपके दांत पहले 7-8 साल बाद टूटने उतरने के मरहले से गुजरते हैं, 10 साल तक दांत भी ठीक हो जाते हैं, वरना तो माँ के पेट वाले दांत होते तो हम सारे 20-22 साल की उम्र में बूढ़े हो चुके होते हैं। अल्लाह को पता था बच्चों ने चीनी चॉकलेट वगैरह खानी है, ये उसके निज़ाम देखिए। खैर उसके बाद क्या होता है कि हर रोज़ सुबह एक खाली पेज हमारा खुलता है, और हम जो सोचते हैं जो देखते हैं जो बोलते हैं, जो हमारे साथ होता है ना, उसमें हम लिख रहे हैं। इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफलून। सूरत इन्फितार में अल्लाह ने क्या कहा, किरामन कातिबीन तुम्हारी हर चीज़ लिख रहे हैं। एक दिन इसी किताब ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तसव्वुर में कोई बुक ले आइए, मेरे पास भी है, मैं दिखा देती हूँ। लेट्स सी, अगर ये मेरी किताब ज़िंदगी है, ये मेरे सामने है। अब जिस दिन मेरा शऊर शुरू हुआ, अल्लाह ने इसका एक पेज खोल दिया, अब लिखा जाएगा। ये जो 10 साल की उम्र है नमाज की, फर्जियत की, उसी के इर्द गिर्द पीबीटी की एज है ना, हर रोज़ सुबह उठ के हम लिख रहे हैं। कुछ सो सो के गुजार देते हैं, कुछ कुछ देख देख के गुजार देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा मेरी ज़िंदगी में, आज 2023 9 जनवरी है, मुझे नहीं पता ये दिन कब आएगा, लेकिन ये पेज ये देखिए, ये आखिरी पेज है ना बुक का। अब मैं अगर ये बुक पढ़ रही हूँ, और ये बुक बड़ी प्यारी है, कुरान का मतलूब इंसान, ये हम इस सीरीज़ में फ्राइडेज़ को पढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, इस तरह का एक सफ़ा खुले। जब मैंने इस बुक का ये पेज खोला है ना, तो मुझे उस दिन नहीं बल्कि उससे पहले ही पता था कि इसके पेज थोड़े रह गए हैं। लेट्स सी, मैं इधर हूँ तो मुझे पता है कि इसके, ये देखिए, 29 पेज हो गए हैं, और मैंने पहले ही दिन देख लिया था कि इसके 79 पेजेस हैं। ये है, फिर मैं इधर थोड़े दिन बाद इधर आ जाऊँगी, बल्कि ऐसे आ जाऊँगी ना इधर, ये देखिए, तो मुझे पता है कि मेरी आधी पढ़ी गई आधी पीछे। और जिस दिन मैंने इधर आना है ना, तो मुझे पता है कि आज ये बुक पूरी हो रही है। इसके बरक्स जो आपकी मेरी किताबें ज़िंदगी है ना, हमें नहीं पता कि उसके 79 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, या 500 पेजेस हैं। ऐसे ही दिनों में से एक दिन होगा, ऐसी सुबह होंगे, पता नहीं गर्मियाँ होंगी कि सर्दियाँ, हम सफ़र में होंगे कि हजर में होंगे, और हमारी उसी किताब ज़िंदगी का उस दिन आखिरी सफ़ा खुलेगा। सुबह भी नहीं हमें पता होगा, इवन बेड रिडन लोगों को भी नहीं पता होता कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और फिर हमारी किताब ज़िंदगी बंद हो जाएगी। कुरान इसको क्या कहता है, सूरत बनी इसराइल में अगर आप पढ़ते हैं, वकुल्ला इंसान नलज़मनाहु तायरहु फी उनुकि वनुख्रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान के गले में नेकलेस पहनते हैं हार, इसी तरह हम सब के गले में एक ऐसा हार है जो दूसरों को नहीं दिखता बट हमें दिखता है, और वो नामे अमाल है। तायरहु, तायर परिंदे को कहते हैं। क्यामत के दिन ऐसे उड़ा के दिए जाएंगे, अगर मैं कुछ पेजेस लेके यूं उड़ाऊँ ना, तो उड़ के कोई इधर गिर जाएगा कोई इधर, और दाएं हाथ वालों के खुद ब खुद दाएं हाथ में, और बाएं वालों के बाएं में जाएंगे, वो नहीं पकड़ेंगे। तो मैं वराई जहरी, वो पीछे हाथ कर लेंगे, हमने नहीं लेना अपना रिजल्ट। जैसे मैट्रिक का रिजल्ट निकले और कोई फेल हो तो कहते मैं नहीं मानता, मैंने नहीं लेना, वो उड़ के वो पीछे जाकर उसके बाएं हाथ में चिपक जाएगा कि ये तेरा नामे अमाल है। और जब ये बंद होगा, आज खुली भी ये किताब, कल बंद हो जाएगी, और फिर एक खुलेगी, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, तू खुद काफ़ी है आज के दिन अपना हिसाब लेने के लिए। अपनी किताब खुद पढ़नी पड़ेगी, ये सोच कर किताबें ज़िंदगी लिखिए कि कल इसको पढ़ना, और अकेले में नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स के सामने हमारी ज़िंदगी की फिल्म चलेगी। आजकल फिल्में चलती हैं ना, शादी हाल में बड़े बड़े स्टेज सजते हैं, आगे पीछे सब दिखाते हैं, और हमें कहा जाएगा इकरा, खुद पढ़ो, ये तन्हाई में क्या करते थे, ये पढ़ो ज़रा, ये किधर नज़र चली गई थी, ये पढ़ो ज़रा, ये माँ बाप को बता के कुछ और गई थी तो गई किधर थी, ये वो सफ़ा नंबर 80 पे खोलो ना ज़रा, क्या लिखा, ये वीकेंड की नाइट थी, कहाँ थी तुम। और आप ऐसे ही है ना, जैसे उस्ताद कभी कॉपी चेक करते हैं, कभी ऐसे ही होता है बैठे, चलो भी कापियाँ खोलो, तो स्टूडेंट्स का पता क्या दिल करता है, वो सफ़ा खोलें जो बड़ा अच्छा है, ये देखे मैम, देखे मैंने कितने से नोट्स लिए, कहते ओके ओके, ये क्या है, इधर क्या हो, ये तुम क्या कर रही थी। हम तो चाहते हैं ना कि हमारा 27वीं रात वाली इबादत का पेपर खुले, और हमारा उमरा, ये देखे मैंने उमरा किया, ये देखे मैंने कुरान पूरा किया, फरिश्तों ने कहना ठहरो ज़रा, ये क्या है, एक मिनट, ये तुम किधर थे। ये न्यूयॉर्क गए थे तुम? अच्छा ये किधर थे तुम? आपको छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं ये नहीं मुझे दिखाएं, वो खोलेंगे वो जो हम नहीं दिखाना चाहते। और सबके बीच में बताओ जरा, ये तुम तन्हाई में क्या करते थे? ये फोन की स्क्रीन पे क्या चलता था? ये चिटचिट क्या होती थी? ये सारी रात ही बातें करते जाओ वाला पैकेज ले तो लिया था, तो बातें क्या करते थे तुम? ये सीधे साधे शोहर को धोखा क्या दिया तुमने? और इतनी पाक दामन बीवी को तुमने क्या धोखा दिया? सब अपना खुद किया जठा सुनाएंगे। उस दिन इस बात की समझ आ जाएगी कि कद अफलह मन जक्काहा, जिनकी किताबें जिंदगी साफ सुथरी, आंखें पाक नजरें पाक, छुकी हुई यगुद्दु मिन अबसारिहिम यहफ़ज़ू फुरूजहुम। वो तो बड़े हो गए हैं, जिसको मर्जी पढ़ा लो। देखिए जिसके पास है ही कुछ नहीं छुपाने को, उसको क्या गम? फिक्र किसको होती है? आप अपने मियाँ के साथ इतनी सिंसियर हैं, चले अगर किसी के घर में खर्चे पानी के लिए पैसे मिलते हैं, मियाँ साहब पूछ लेते हैं भाई किधर लगाया तो दिखा दें। जब आपने कोई हेरा फेरी की नहीं तो फिर के आपको क्या डर? क्यामत का दिन उन लोगों के लिए मुश्किल होगा, यौमन असीर, सूरत मुद्दसिर में अल्लाह कहते हैं काफिरों के लिए बड़ा मुश्किल दिन होगा, क्योंकि उसने हेरा फेरियाँ की, उसने इधर की चीज़ें उधर की होंगी। आप कहते हैं जी बैग चेक कराओ, कर लें हमारे बैग में क्या? सिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, आपकी इमिग्रेशन हो रही है किसी मुल्क में, पासपोर्ट दिखाएं, देख लें 100 दफ़ा देखें, वीज़ा भी ठीक है, पासपोर्ट भी ठीक है, कोई जाली नहीं, कोई दो नंबर ही नहीं। और अगर नकली तस्वीरें लगवा कर इधर ट्रैवल एजेंटों को पैसे देकर नॉर्वे का वीज़ा लगवाया हुआ तो फिर कैसे एंटर होते हैं? सबको पता है, किसी एक ब्रदर ने सुनाई थी बात आपके सर को, कि लीगली शंगन के एक मुल्क में वो दाखिल हुए थे, क्योंकि फिर वो ऐसे तो नहीं जाते ना जहाँ इमिग्रेशन हो, और छुपते छुपाते बॉर्डर की किसी ऐसी जगह में जहाँ वीराना था, बीच में पानी आया था, तो पानी में से वो कहते हैं हम निकले थे और बिल्कुल शल हो गए थे हम। बड़ी दुखी कहानी सुनाई थी, शौक था कि शंगन में चले गए तो दुनिया ही बदल जानी है, यूरोप जा रहे हैं हम। लेकिन क्यामत के दिन सब कुछ सामने आएगा, तो जब क्यामत का दिन आएगा फिर उस दिन हमें समझ आएगी कि हम करके क्या आए हैं। उस दिन तज़किए नफ्स और अपने नफ्स की इसलाह की फिक्र लगी होगी, हैरत होगी, हक्का बक्का इंसान इतना फबूहित अल्लज़ी कफर, जैसे अल्लाह ने नमरूद की बात की ना, मबहूत हो गया वो शख्स जिसने कुफर किया। इस तरह मौत के वक्त काफिर फाजिर और नाफरमान ठिठक जाता है, ये आप जो कहते हैं ना आंखें ऊपर लग जाती हैं, ये हैरत की हद होती है। फरिश्ते को देखकर, मलकुल मौत को देखकर, हाय अभी तो सोचा भी नहीं था, हाय मेरी तो अभी तैयारी भी नहीं थी, कहीं जाना हो पहले से पता है, कोई आ रहा है तो पता होता है, और कोई अचानक आपके सर पे हाथ धमके जल्दी करो तो आप कहते मेरी तो तैयारी नहीं, और जाए कोई बेशक आपको शादी में लेकर, आपके मैं नहीं जाऊंगी, तो पूछें हम खुद से क्या मेरी मौत की तैयारी है? क्या मैं अल्लाह ताला को सामना करने के काबिल हूँ? क्या मैं अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक हूँ? और अगर पहले से तैयार है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन बड़ा मुतमइन पहले से बैग पैक करके खड़ा होता है कि बस मलकुल मौत आने ही वाला है। जब नफ्स का आप तज़किया कर लेते हैं ना अपने, इंतज़ारे मौत है ये लफ्ज़, मौत से क्या लगता है? मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दे जाती हूँ, अपनी मौत का सोचें तो हाथ पांव पड़ जाते हैं। मौत का सुनकर बीपी हाई हो जाता है या शुगर डाउन हो जाती है, लो हो जाती है तो फिक्र करें। और अगर दिल में एक अजीब सा सुरूर, जैसे आपने कनाडा जाना है और वहाँ नियाग्रा फॉल देखनी है, तो जो ही सफ़र शुरू होता है ना वो अंदर दिल बिलियों उछलता है। और चलें कोई और मिसाल दे दूँ, हज और उमरा कभी नहीं गए, हाय मैं काबा देखूंगी, हाय मैं रोजे की जालियों को हाथ लगाऊंगी, तो बंदे को यकीन ही नहीं आता ना, खुशी का कोई मौका भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता और गम का भी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी मौत का सोचकर क्या लग रहा है? बस ये है आप, एक अंदर महूम सी खुशी का एहसास, अच्छा अब सबसे मिलूंगी,